निर्देशन का अर्थ मीनिंग ऑफ गाइडेंस। शुरू में निर्देशन के अंतर्गत व्यवसाय से संबंधित समस्याओं पर ध्यान दिया जाता था। नवयुवकों को व्यवसाय चुनने में मदद की जाती थी। इसका प्रमुख उद्देश्य यह था कि बाल अपराध में कमी लाई जा सके। किशोर अवस्था के बालक एवं बालिकाएं जो स्कूल नहीं जाते थे, उनके पास कोई काम नहीं था, उनके पास बहुत समय बचता था। इस प्रकार की परिस्थितियां बाल अपराध बनने में मदद करती हैं। निर्देशन के शुरुआत में भी केवल उन्हीं के लिए व्यवसायी खोजना ही लक्ष्य नहीं था। इस बात पर भी जोर दिया जाता था कि निर्णय बुद्धिमत्तापूर्ण हो तथा जो भी निर्णय लिया जाए वह व्यक्ति की योग्यता एवं आवश्यकताओं के अनुकूल हो। यद्यपि शुरू में व्यावसायिक क्षेत्रों पर अधिक जोर दिया गया था, लेकिन जब निर्देशन इस क्षेत्र के बहुत सा आगे बढ़ चुका, अब यह व्यक्ति के सभी समस्याओं के समाधान में मदद पहुंचाता है। कुछ व्यक्तियों को निर्देशन की जीवन पर्यंत आवश्यकता पड़ती है। कुछ लोगों को युवावस्था अथवा विशेष परिस्थिति में भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। समाज की जिम्मेदारी बच्चों एवं नवयुवकों के निर्देशन के प्रति है। इसके अलावा विशेष परिस्थिति जैसे बीमारी या दुर्घटना के समय भी निर्देशन की आवश्यकता होती है। जोन्स ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस के निर्देशन में परिभाषित किया है। इनके अनुसार निर्देशन व्यक्तिगत सहायता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को चुनाव एवं समायोजन करने में तथा समस्याओं के समाधान में मदद करता है। स्किनर निर्देशन को एक प्रक्रिया माना गया है जिसमें नवयुवकों को इस बात के लिए मदद की जाती है कि वे स्वयं तथा दूसरे के साथ और विभिन्न परिस्थिति में अपने को समायोजित कर सकें। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि निर्देशन लक्ष्य व्यक्तियों को व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान में मदद पहुंचाना है, प्रतिकूल परिस्थितियों में समायोजित करना, क्षमताओं का विकास करना तथा समुचित व्यवसाय का चयन करके जीवन को सुखी बनाने में मदद करता है। निर्देशन के प्रकार अलग अलग विद्वानों ने निर्देशन के विभिन्न प्रकार बतलाए हैं, लेकिन यहाँ पर हम केवल जोन्स द्वारा बतलाए गए क्षेत्रों का वर्णन करेंगे। जोन्स के अनुसार 8 प्रकार के निर्देशन होते हैं। व्यक्तिगत निर्देशन, सामाजिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, पाठ्यक्रम एवं विद्यालय निर्देशन, स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास संबंधित निर्देशन, खाली समय में संबंधित निर्देशन, पारिवारिक निर्देशन, धर्म से संबंधित निर्देशन। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मनोवैज्ञानिक शाला तथा इसकी शाखाओं द्वारा किए जा रहे निर्देशन कार्य को मुख्य रूप से 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पहला शैक्षणिक निर्देशन, दूसरा व्यावसायिक निर्देशन, तीसरा व्यक्तिगत निर्देशन। केंद्रीय शिक्षक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो दिल्ली ने भी इस वर्गीकरण को स्वीकार किया है। आजकल बच्चों की समस्याओं के अध्ययन पर बल देने के लिए निर्देशन की एक अलग शाखा के रूप में शिशु निर्देशन को मान्यता दी जा रही है। उनके शिशु निर्देशन केंद्रों पर शिशुओं के समस्याओं से संबंध पता लगाया जाता है और उनके उचित निर्देशन दिया जाता है। शैक्षणिक निर्देशन। यद्यपि कि निर्देशन के कई प्रकार बतलाए गए हैं, लेकिन यह वर्गीकरण बहुत उचित नहीं है, क्योंकि निर्देशन के सभी प्रकार करीब करीब एक साथ दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए, हाई स्कूल का छात्र इच्छा करता है कि वह डॉक्टर बने। यदि हम निर्देशन के रूप में इस बात से सहमत हैं कि उसकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उसमें वे गुण हैं जो व्यावसायिक निर्देशन होगा, इसके साथ ही हम उसे यह भी निर्देशन देते हैं कि कॉलेज में उसे किन विषयों के चयन करना है, तो यह शैक्षणिक निर्देशन होगा। उसे हम यह भी बतलाते हैं कि डॉक्टर लोगों को किस प्रकार के गुण होते हैं जिससे वह अंदर भी उन गुणों का विकास कर सके, उसके जिसकी उसे बाद में आवश्यकता पड़ेगी। जोन्स के अनुसार शैक्षणिक निर्देशन व्यक्तिगत सहायता है जो छात्रों को इसलिए प्रदान की जाती है कि वे अपने लिए उपयुक्त विद्यालय, पाठ्यक्रम, पाठ्य विषय तथा स्कूली जीवन का चयन कर सकें तथा उनमें समायोजन स्थापित कर सकें। मायर्स के अनुसार शैक्षणिक निर्देशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक और व्यक्ति तथा विशिष्ट गुण, दूसरी तरफ अवसरों के विभिन्न समूह और आवश्यकताओं के मध्य व्यक्ति के विकास या शिक्षा के अनुकूल सेटिंग की तैयारी की जाती है। रूत स्ट्रेंग के अनुसार व्यक्ति को शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य उसे उपयोगी कार्यक्रम का चयन करना है तथा उसमें प्रगति में सहायता देना है। शैक्षिक निर्देशन विस्तृत रूप से व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता पर निर्भर करता है, जिसका हम सबसे अच्छा मापन बुद्धि परीक्षणों को सहायता में किया जा सकता है। हमें विद्यार्थी को उसकी शैक्षिक तत्पश्चात व्यावसायिक उद्देश्यों को क्षमता के अनुसार निश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये उद्देश्य उसकी क्षमता से ना तो अधिक ऊंचे हों और ना ही बहुत नीचे। निर्देशन के इस पक्ष का महत्व समाज तथा साथ साथ व्यक्ति के लिए भी है। किसी व्यक्ति में परिवर्तन लेने में बहुत समय लगता है। अधिकतम सीमा तक परिवर्तन उन व्यक्तियों में होता है जिनमें अपने रोजगार संबंधी व्यक्ताएँ बहुत अधिक हो या फिर बहुत कम हो। बहुत योग्यता वाले लोग अपने कार्य को करते हैं तथा बहुत अधिक योग्यता वाले यदि तेजी से आगे नहीं बढ़े तो उबकर कार्य छोड़ देते हैं। वस्तुतः अधिक योग्यता वाले अधिक खराब कार्य कर सकते हैं। एक सर्वेक्षण में पाए गए साक्ष्य से यह बात सही सिद्ध होती है। दुर्घटना से संबंधित अध्ययन में पाया गया कि उन टैक्सी चालकों से ज़्यादा दुर्घटनाएं हुई जो अपेक्षाकृत औसत से अधिक बुद्धिमान थे। संभवतः वे अपनी ड्राइविंग पर पूरा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं समझे, अतः वे दीवारस्पन की तरह प्रवृत्त हो गए और इसका परिणाम भयंकर हुआ। हाई स्कूल के विद्यार्थियों को कॉलेज की पढ़ाई संबंधी सलाह देते समय हमें स्पष्टवादी तथा यथार्थवादी होना चाहिए। हाई स्कूल के माध्यम श्रेणी का विद्यार्थी यदि स्नातक बनता है तो वह वास्तविक शिक्षा का बहुत छोटा भाग ही अर्जित कर पाएगा और शिक्षा में अच्छा अंक नहीं कर पाएगा। अतः उचित यह होगा कि उसे किसी निश्चित व्यवसाय का प्रशिक्षण दिया जाए और कॉलेज में जाने के बाद भी उसकी रुचि पुस्तक पढ़ने में नहीं है तो उसे कॉलेज में जाने के बाद भी उसके कार्य के ढंग में परिवर्तन नहीं होगा। अतः शिक्षक तथा या प्रधानाचार्य को मध्यम श्रेणी के विद्यार्थियों को तब तक कॉलेज में प्रवेश नहीं देना चाहिए जब तक कोई ठोस कारण ना हो जिसे निश्चित सुधार की उम्मीद की जा सके। हमें योग्यताओं का अध्ययन सिर्फ सामान्य स्तर पर ही नहीं करना चाहिए बल्कि किसी खास विषय में अधिक या कम उपलब्धि की भविष्यवाणी करने वाले योग्यताओं का भी पता लगाना चाहिए। सामान्य योग्यता में अनेक कारण सम्मिलित होते हैं जो बौद्धिक क्षमता का निर्धारण करते हैं। एक ही समान समूह के पर्याप्त व्यक्तिगत भिन्नताएँ होती हैं, अतः अधिक विकसित महाविद्यालय आवश्यक पाठ्यक्रम में कठोर अनुक्रम पर कम बल देने लगे हैं। यदि विदित है कि जो विद्यार्थी विदेशी भाषा, गणित, रसायन विज्ञान की योग्यता नहीं रखते हैं वे अपनी क्षमता तथा रुचि के अनुसार अन्य विषय लेंगे और भविष्य में उसका अधिक संभव उपयोग करेंगे। शैक्षिक निर्देशन की उपयोगिता। स्कूल में अध्ययन करने वाले अधिकांश बच्चों को यह ज्ञात नहीं होता कि उन्हें अपनी योग्यता अनुसार किन पाठ विषयों को अध्ययन के लिए चुनना है। गलत पाठ विषयों के चयन से शिक्षा में अपव्यय की समस्या उत्पन्न होती है जिसके लिए शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है।